थिएटर का हिंदुस्तानी अंदाज। आगरा बाजार की पहली प्रस्तुति ने हबीब तनवीर को भारतीय रंग जगत में महत्वपूर्ण निर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उनके रंगकर्म में एक नितांत नई दृष्टि की खोज और उसके आकलन में अनेक समर्थकों और प्रशंसकों की संख्या में भरपूर इजाफा भी हुआ। इनमें सबसे प्रमुख थी दो महिलाएं, बेगम अनीस किदवई और बेगम कुदसिया जैदी। इन दोनों ने आगरा बाजार के प्रदर्शनों को अनेक स्थानों और विभिन्न नगरों में मंचित किए जाने में अहम भूमिका निभाई। बेगम जैदी तो हबीब तनवीर की रंग दृष्टि से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने अपने हिंदुस्तानी थिएटर के प्रमुख निर्देशक के तौर पर काम करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर लिया। बेगम जैदी उस समय की अत्यंत संभ्रांत घराने की मुस्लिम महिला थी, जिन्हें अपने देश के साहित्य और संस्कृति में गहरी दिलचस्पी थी। खास तौर से नाटक के क्षेत्र में उनके जबरदस्त सूझबूझ और आत्मविश्वास के कारण हमारे देश के रंगमंच की विरासत का आज भी एक अहम हिस्सा है। उनके द्वारा किए गए अनेकानेक रूपांतर इस बात के प्रमाण हैं। बर्नार्ड शॉ के दो विश्व प्रसिद्ध नाटक पिग्मैलियन और इब्सन के कालजयी नाटक द डॉल्स हाउस के अनेक रूपांतर, आजर का ख्वाब और गुड़ियाघर का हिंदी रंगमंच पर आज तक प्रस्तुत किया जाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस तथ्य का उल्लेख करना चाहिए इसलिए जरूरी सा है कि बेगम जैदी का रंगमंच के प्रति प्रेम या उनकी आस्था को भारतीय रंगमंच के विकास के परिप्रेक्ष्य में उचित रूप से आंका जा सके। बहरहाल, बेगम कुदसिया जैदी ने जब हबीब तनवीर के सामने एक नई संस्था हिंदुस्तानी थिएटर के निर्देशकीय दायित्व को स्वीकार करने का आमंत्रण दिया, तभी उन्हें लंदन स्थित रंगमंच की विश्व प्रसिद्ध संस्था रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में रंगमंच के अध्ययन के लिए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा छात्रवृत्ति मिल गई और वे लंदन जाने की तैयारी में जुट गए। बेगम जैदी ने उनसे वायदा लिया कि दो वर्ष के बाद वे भारत लौटेंगे और हिंदुस्तानी थिएटर का निर्देशकीय कामकाज संभालेंगे। हबीब तनवीर ने उनके सामने कुछ बेहद मुश्किल से लगने वाली शर्तें रखी, सभी रंगकर्म से संबंधित। पहले यह थी कि तब तक बेगम जैदी विश्व प्रसिद्ध संस्कृत और विदेशी भाषाओं के कम 12 नाटकों का भारतीय रूपांतर तैयार करवा कर रखेंगी। इन नाटकों की सूची में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, शुद्धक का मक्षकटकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, भवभूति का उत्तर रामचरित जैसे नाटकों के अतिरिक्त शेक्सपियर, जार्ज, बर्नार्ड शॉ, इब्सन, मैलियार आदि के अनेक नाटक सम्मिलित थे। दूसरी शर्त इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी, वह थी हिंदुस्तानी थिएटर के कामकाज की शुरुआत से पहले कम से कम 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली जाएगी, जिससे कि हिंदुस्तानी थिएटर को शुरुआती दिनों में धन के लिए किसी पर आश्रित न रहना पड़े। बेगम जैदी ने हबीब तनवीर की दोनों शर्तें मान ली और हबीब तनवीर दो वर्षों के बाद भारत लौटने और उसके बाद हिंदुस्तानी थिएटर का काम करने का वायदा करके लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में राडा में प्रवेश लेने के बाद हबीब तनवीर को पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करने का अवसर मिला। उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। इस प्रसंग का जिक्र पिछले अध्याय में विस्तार से किया जा चुका है। बहरहाल, 2 साल पूरे होते न होते बेगम जैदी ने हबीब तनवीर को बार बार बुलवाया और लिखा कि तुम्हारी शर्तों के मुताबिक यहाँ सारा काम पूरा कर लिया गया है और जल्दी से जल्दी वापस आकर हिंदुस्तानी थिएटर का काम संभालो। लेकिन हबीब तनवीर अनेक यूरोपीय देशों का भ्रमण करते हुए वहाँ की मिट्टी में रचे बसे थिएटर का जायजा ले रहे थे। बेगम जैदी को ये बात बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने हबीब तनवीर के वापस लौटने तक इंतजार करने के बजाय एक नए निर्देशक की तलाश शुरू कर दी और तब उनकी निगाह मोनिका मिश्रा पर पड़ी। वे कोलोरेडो में ड्रामेटिक्स में डिप्लोमा करके भारत आई थी और अपनी और पहले कमला देवी चट्टोपाध्याय के राष्ट्रीय दिल्ली नाट्य संघ से और फिर इब्राहिम अल काजी द्वारा मुंबई में संचालित थिएटर इंस्टीट्यूट से संबद्ध थी। बेगम जैदी ने जब उन्हें 200 रुपये महीने के वेतन का प्रस्ताव दिया तो वे मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गई और उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर के लिए पहला नाटक निर्देशित किया, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का रूपांतर शकुंतला। शकुंतला में सभी अभिनेताओं और रंगकर्मियों को पारिश्रमिक दिया गया था। मूलतः बेगम जैदी का हिंदुस्तानी थिएटर हिंदी रंगमंच का पहला पेशेवर संगठन था जिसने हिंदी रंगमंच की स्वतंत्र सत्ता का सपना देखा था। इस दृष्टि से शकुंतला हिंदी रंगमंच का पहला कामयाब नाटक था जिसमें आम आदमी की जुबान में संस्कृति कालजयी नाट्य रचना को प्रस्तुत किया गया था। भले ही उसके अभिनय का मुहावरा हबीब तनवीर द्वारा स्थापित किए गए मुहावरे से बहुत भिन्न था, फिर भी उसने दर्शकों को पश्चिमी नाटकों के अंधाधुंध दौड़ के उस समय एक भिन्न प्रकार का आस्वाद दिया। इस नाटक मैं उस समय के दिल्ली की अत्यंत प्रतिष्ठित अभिनेताओं ने उसमें भाग लिया था। शकुंतला के बाद मोनिका मिश्रा ने बेगम जैदी द्वारा किए गए चार्लीज ऑन्ट के रूपांतर खालिद की खाला का निर्देशन किया, लेकिन किन्हीं कारणों से उस नाटक के निर्देशक के रूप में मोनिका मिश्रा का नाम नहीं दिया गया। इस कारण मोनिका जी के मन में खटास का बीज पड़ गया। इसमें इजाफा तब हुआ जब उसके तुरंत बाद यह हबीब तनवीर अपने विदेश यात्रा से लौट आए। विदेशों में हबीब तनवीर की विभिन्न अनुभवों और उनके संकल्पों की जानकारी लेने के बाद बेगम जैदी ने हबीब तनवीर को हिंदुस्तानी थिएटर के निर्देशक का दायित्व सौंपने का निर्णय लिया। वस्तुतः उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना के विचार के साथ ही हबीब तनवीर को अपने साथ जोड़ लिया था। हबीब तनवीर भी एक ऐसे मुकाम की नहायत ज़रूरत थी जहाँ वे अपने अनुभवों और विचारों को रंगमंच पर आजमा सकें। तब अतः हबीब तनवीर हिंदुस्तानी थिएटर के निर्देशक बना दिए गए। अब मोनिका मिश्रा के सामने केवल दो विकल्प रह गए। पहला यह कि वे हबीब तनवीर के माता तो उनके सहयोगी के रूप में कार्य करें, जो उनके स्वाभिमान को गंवारा नहीं हुआ। दूसरा विकल्प था कि हिंदुस्तानी थिएटर को छोड़ दें। मोनिका जी ने दूसरा विकल्प स्वीकार किया। अपने स्वाभिमान के साथ साथ समझौता करना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बनाने में काफ़ी हद तक सफल रही थी। हिंदुस्तानी थिएटर में हबीब तनवीर की आमद मोनिका मिश्रा के रुख्सत का सबब बन गई। स्वाभाविक था कि हबीब तनवीर के प्रति मोनिका मिश्रा के मन में विक्षोभ और विमनस का भाव जागृत हुआ। वे मन ही मन हबीब तनवीर को अपना सबसे बड़ा विरोधी या कहिए शत्रु समझने लगी। दिलचस्प बात यह कि हबीब तनवीर के प्रति यह विक्षोभ और विमनस की भावना ही एक दूसरे में इतना निकट ले आई कि कुछ ही वर्षों के बाद उन्होंने विवाह कर लिया। हबीब तनवीर और मोनिका मिश्रा के अंतरंग संबंध की अंततः हबीब तनवीर के रंगकर्म के लिए जीवनी शक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुए। हिंदुस्तानी थिएटर के लिए हबीब तनवीर ने सबसे पहले शुद्रक के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम का चुनाव किया। मृच्छकटिक का यह चुनाव अनायास नहीं था, उसके पीछे भी हबीब तनवीर की गहरी सोच थी। सबसे पहले हबीब तनवीर उसके कथानक से प्रभावित हुए। मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त संस्कृत के अधिकांश नाटकों से परे एक धीरोदात और समाज का अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजा या राजपुत्र नहीं बल्कि निर्धन व्यक्ति है, जो अपने यह सद्गुणों के कारण ही दुर्दिनों का शिकार होता है। वह विवाहित है और उसका एक पुत्र भी है। उसकी पत्नी अत्यंत सुशीला है और चारुदत्त के जीवन के अत्यंत कठिन क्षणों में वह पूरी निष्ठा और प्रेम से चारुदत्त के दर्द को आत्मसात करते हुए उसका भरपूर साथ देती है। चारुदत्त पारिवारिक दृष्टि से पूरी तरह संतुष्ट है। दूसरी ओर है इस नाटक की नायिका वसंत सेना। वह नगर की प्रसिद्ध गणिका है और उसके सौंदर्य तथा उसकी कला पर नगर के सामान्य जन ही नहीं राजा का साला शकार तक पूरी तरह मुग्ध है। वसंत सेना को प्राप्त करने के लिए वह अपने बहनोई राजा के नाम का दुरुपयोग करने में भी नहीं चूकता और उसकी षड्यंत्रकारी वृत्ति उसकी लुलुपता को पूरी तरह उजागर करती है। वसंत सेना का चारुदत्त के प्रति असीम प्रेम इस नाटक का केंद्रीय आधार है। इस नाटक का तीसरा पक्ष और भी दिलचस्प है। चूर और जुआरी किस्म के चरित्र, जो आमतौर पर सभ्य समाज में उपेक्षित समझे जाते हैं, उनकी उदात्त भावना की अभिव्यक्ति इस नाटक में अनेक रूपों में हुई है। जुआ खेलने के लत का शिकार एक ब्राह्मण युवक अपने निश्चल प्रेम के वशीभूत होकर चोरी करता है। चोरी के काम में अत्यंत प्रवीण वह युवक समय आने पर अपनी उन विशुद्ध मानवीय भावनाओं के व्यक्त करता है, जो उसके व्यक्तित्व की पारदर्शिता को पूरी शिद्दत के साथ उजागर करने का अवसर प्रदान करती है। इस तरह हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया संस्कृत नाटक हमारे आज के मूल्यों को चुनौती तो देता ही है, साथ ही हमारी अनेक स्थापित मान्यताओं में प्रश्न चिन्ह लगाने में भी पूरी तरह कारगर है। यह तो मृच्छकटिक की कथानक की वह विशेषता जिसने हबीब तनवीर के मन को पूरी तरह आकृष्ट कर लिया। लेकिन जब इस नाटक के मंचन की दृष्टि से उन्होंने इसे विश्लेषित किया तो उनके सामने समस्याओं का अंबार लग गया। इस नाटक की अभिनय पद्धति क्या हो? पाश्चात्य यथार्थवादी अभिनय पद्धति तो कतई अनुकूल नहीं थी, फिर इसका विकल्प क्या हो? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी मंच सज्जा कैसी हो, किस तरह का सेट इस नाटक के उपयुक्त होगा। ये और इस तरह के अनेक प्रश्न हबीब तनवीर के मन को अरसे तक मतते रहे थे। इस संबंध में हबीब तनवीर ने कहा, मृच्छकटिक को मैंने न जाने कितनी बार पढ़ा, न जाने कितने सेट मेरे दिमाग में घूमते रहे, कम से कम 12 सेट तो जहन में घूम ही होंगे। जब मैं यूरोप में था तब भी यह नाटक मेरे मन में था। सच पूछिए तो मैं 1.5 साल तक इस उम्मीद में ही भटकता रहा इसे कहीं कर सकूं। हर मुल्क में यही एम्बिशन लिए हुए जाता। बेल्जियम में बात पक्की भी हो गई पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। रॉस्टॉक ने मुझे बुक भी कर लिया था कि साल भर बाद भारत से लौट कर मैं यह नाटक करूंगा, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। हिंदुस्तानी थिएटर के लिए जब करने चला तो अहम सवाल था सेट। निचिकटी का सेट कैसा हो, नाटक में रुकावट न डाले। डंकन डॉस की बात जहन में थी, कोई भी सेट पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा था। किसी में गाड़ी तीसरे सीन में अटक जाती तो किसी में सातवें में। करते करते मैं पहुंचा एक गोल चबूतरे पर। लगा कि नाटक के अंदर गोल मूवमेंट है और उसके लिए गोल चबूतरा ही सबसे सही सेट हो सकता है। बारादरी कटी और सब कट गया, बचा केवल चबूतरा। अब मृच कटी के अभिनय पक्ष की बात। हिंदुस्तानी थिएटर के निर्देशक के पद को स्वीकार करने और मृच कटिक को वंचित करने के इरादे के बाद वे अपने परिवार वालों से मिलने रायपुर आ गए। रायपुर में उन दिनों नाचा चल रहा था। नाचा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है जो संगीत और नृत्य से सराबोर है। साथ ही इस लोक नाट्य में तात्कालिक स्थितियों, समस्याओं और परिस्थितियों का भी व्यंग्यात्मक रूप से चित्रण होता है। नाचा हमारे देश के अनेक लोक नाट्य पद्धतियों के अनुसार सारी रात चलता रहता है। हबीब तनवीर ने अपनी सारी यूरोपीय नाट्य पद्धतियों के अनुभव के बाद जब नाचा देखा तो वे पूरी तरह मुग्ध हो गए। संगीत और नृत्य की आंचलिक परंपराओं में उन्हें ऐसे विशुद्ध भारतीय तत्व नजर आए जिनकी तरफ संभ्रांत समझे जाने वाले नागरिक मुखातिब ही नहीं हुए थे। नाचा के उन आंचलिक कलाकारों की सहजता और स्वतः स्फूर्तता ने उनके अंदर तक झकझोर दिया। वे सारी रात उन कलाकारों के अभिनय और संगीत का आनंद लेते रहे। तब उन्हें लगा कि भारतीय रंगमंच की पुनर्परिष्कार का जरिया इस किस्म के अभिनेता ही हो सकते हैं जिनके अभिनय में इनकी सहजता, स्वतः स्फूर्तता और शक्ति है जो हमारी पारंपरिक रंगमंच का प्राण तत्व है। ये कलाकार संगीत नृत्य में भी प्रवीण है और समादों को कहने की उनकी प्रभाव प्रणाली अत्यंत स्वाभाविक है। स्थितियों के अनुकूल समादों को तुरंत गढ़ने और नाटकीय अंदाज में उन्हें व्यक्त करने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। हबीब तनवीर ने उनमें से 5 कलाकारों को चुना और उन्हें दिल्ली चलने का प्रस्ताव दिया। ये लोग थे मदनलाल, ठाकुर राम, भुलवा राम और बाबूराम। जगमोहन क्लेरियोनेट बजाने में माहिर थे, वे भी साथ आने के लिए तैयार हो गए। राजा नांदगांव जाने पर उनकी मुलाकात लालू राम से, जिसके पास छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का भारी खजाना था। अपने दल के 6ठे सदस्य के रूप में उन्होंने लालू राम को चुना। 6 लोगों के इस दल को लेकर जब मिट्टी की गाड़ी में उनसे अभिनय करवाने का संकल्प लेकर दिल्ली पहुंचे तो उन्हें देखकर बेगम से नाराज हुए। ये लोग शुद्रक के विश्व प्रसिद्ध नाटक के अभिनय करेंगे, हबीब तनवीर के शब्दों में। उन्हें देखकर बेगम जैदी बड़ी असंतुष्ट थी। यह तुम किन्हें पकड़ लाए, काली काली सूरतें, जंगली किस्म के लोग। नाटक में हीरो हीरोइन के खूबसूरत चेहरे होने चाहिए, सो तुम न जाने किन लंगड़े लूलों को पकड़ लाए हो। जाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे भला इन्हें देखकर। लेकिन हबीब तनवीर के मन पर इनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उनके जहन में संभावित खतरों के प्रति कोई आशंका संकोच नहीं था, लेकिन इसके पीछे उनका बड़ा भारी आत्मविश्वास है जो बाद में रंग भी खूब लाया। पात्रों के चुनाव में हबीब तनवीर की बेहद सावधानी बरती। वसंत सिन्हा एक गणिका है, उसके अभिनय में शास्त्रीय नृत्य की विशिष्ट मुद्राओं की झलक होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इसकी भूमिका के लिए उस समय की जानी मानी भरत नाट्यम की नृत्यांगना सुश्री रेखा रेवड़ी को चुना। चारुदत्त की भूमिका में थे उस समय दिल्ली के लोकप्रिय अभिनेता श्याम बहादुर। मैत्रेयी की भूमिका में 2 अभिनेता थे जिन्होंने अलग अलग प्रस्तुतियों में इस चरित्र को निभाया था। वे थे आज के प्रसिद्ध निर्देशक राजेंद्र नाथ और दूसरे केवल कपूर। आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसिद्ध कलाकार श्याम अरोड़ा ने शकार का अभिनय किया था। शर्विलक की भूमिका में स्वयं हबीब तनवीर उतरे थे, लेकिन इस चरित्र के बाद में ठाकुर राम ने भी बखूबी निभाया। इस प्रस्तुति में हबीब तनवीर ने सामान्य से लगने वाले पात्रों को, जिनमें चांडाल, जुआरी, चोर आदि शामिल हैं, खासी अहमियत दी थी। चांडालों की भूमिका में भुलवा राम और लालू राम थे। जुआरी बने थे मदनलाल। जगमोहन क्लेरियोनेट पर ही थे। हबीब तनवीर ने सूत्रधार की भूमिका भी निभाई थी। आगरा बाजार के बाद शहरी और आंचलिक अभिनेताओं को एक साथ मंच पर उतरने का यह अनुभव कई दृष्टियों से अभूतपूर्व रहा। पहली बात तो यह कि पूरी प्रस्तुति शैलीबद्ध अभिनय पद्धति पर आधारित थी जो उस समय के रंगमंच के लिए एक नितांत नया अनुभव था। संगीत और नृत्य की लय और ताल से युक्त यह अभिनय यथार्थवादी अभिनय से एकदम अलग और नया आस्वाद देने वाला था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस प्रस्तुति के संबंध में कहा, इस नाटक को प्रस्तुत करने में 9 महीने का कठिन पूर्वाभ्यास किया गया। संगीत, नृत्य और मुकाभिनय की कक्षाएं लगती। पूर्वाभ्यास पूरे दिन चलता जो अभिनेताओं को थका देने वाला होता था। शुरू में वे मेरी बातों को सुनकर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते थे, लेकिन बाद में मेरी बातें उनको समझ में आने लगी। जब तक मैं उन्हें अपनी बातें मौखिक रूप से समझाता रहा वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब मैंने संगीत और नृत्य की गतियों, भाव भंगिमा और अभिनय के जरिए उन्हें अभ्यास करवाया तो मेरी बातें खुद ब खुद उनकी समझ में आने लगी। इस नाटक की प्रस्तुति पर हबीब तनवीर ने पेपर वर्क भी बहुत किया। सेट के बारे में तो पहले ही कहा जा चुका है, लेकिन समूहन और गति संचयन की संचालन की दृष्टि से भी उसे एक निश्चित रूप स्वरूप देने की कोशिश की गई। नाटक के 10वें अंक को यथावत रखा गया, जहां घटना एक स्थल से दूसरे स्थल तक बड़ी तेजी से पहुंचती है। मंच सज्जा दृश्यों को उसी के अनुरूप बदलने में नाटक की गति में अवरोध पैदा हो सकता था, इसीलिए सारी घटनाओं के मंचन के लिए केवल एक गोल चबूतरे को अपनाया। नाटक के मूल आलेख का संपादन किया गया था, लेकिन केवल उसकी लंबाई के कारण उसे थोड़ा संक्षिप्त जरूर कर दिया गया, लेकिन मंचन की सुविधा के लिए अंकों या दृश्यों में खतर व्योत कतई नहीं की गई। एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका हाफिब तनवीर ने कलात्मक तरीके से सामना किया और अपनी प्रस्तुति में पूरी तरह सफल रहे। नाटक का अनुवाद बेगम सैदी ने किया था और उनकी जुबान की रवानगी और नाटकीय मुहावरे के सभी लोग बखूबी परिचित हो चुके थे, लेकिन शुद्रक ने जिन अंशों में पद का प्रयोग किया था हबीब तनवीर ने उन्हें गीतों में ढाला। उनके गीत आंचलिक चरित्रों से संबंधित थे जिनकी भाषा छत्तीसगढ़ी रखी गई और उनकी धुनें भी उसी अंचल से ली गई। वसंत सेना, चारुदत्त, शकार जैसे चरित्रों के गीतों की भाषा हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू मिश्र जुबान थी, जिसका नृत्य और संगीत के शास्त्रीय धुनों और तालों से प्रेरित था। लेकिन इस संस्कृत नाटक की अभिनय पद्धति नाट्य शास्त्र पर आधारित नहीं थी। प्रयोग की दृष्टि से उन्होंने अपने अभिनेताओं को बहुत छूट दी, यह भी चुनौती भरा काम था। इस संबंध में एक आलेख में हबीब तनवीर ने स्पष्ट किया, नृत्य इस प्रस्तुति का अंतरंग हिस्सा था। 6 महीने तक अभिनेताओं को केवल नृत्यात्मक गतियों का अभ्यास कराया गया, क्योंकि हर अभिनेता को लय और ताल के साथ चलना था, एक विशेष मुद्रा में खड़े होना था, मुख अभिनय करना था, यानी अपने शरीर के अंगों से अभिनय करना था। शहरी अभिनेताओं को तो इसका कतई अभ्यास नहीं था। इसके अलावा वसंत सेना को तो नृत्य भी करना था। एक निपुण नर्तकी का चलना या बात करना सामान्य सा नहीं हो सकता, इसके लिए खास शैली ईजाद करनी पड़ी। इसके लिए नाट्य शास्त्र में वर्णित प्रकारों का भी सहारा लिया गया। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था कि सारे अभिनेताओं को अभिनय का प्रशिक्षण नाट्य शास्त्र के मुताबिक ही दिया गया हो। नाट्य शास्त्र की मूल बातों को समझकर उससे अभिनेताओं की सुविधा के अनुसार ढाला गया था। खास बात ये थी कि अभिनेता जो कहना चाहता है वह दर्शकों तक सही सही और कलात्मक तरीके से पहुंचे। मेरे अभिनेताओं को यह छूट थी कि वह अपने ढंग से उन बातों को पेश करें। जब 1997 नाटक की पहली प्रस्तुति हुई, रंग जगत में इसकी दुतरफा प्रतिक्रिया हुई। कुछ समीक्षकों ने इस प्रदर्शन को सिरे से नकार दिया, लेकिन कुछ सुरुचिपूर्ण दर्शकों को यह प्रस्तुति बेहद ताजा और नई जमीन तोड़ने वाली नजर आई। ऐसा नहीं कि सभी आलोचकों की दृष्टि के पीछे विद्वेष या भारतीय परंपरा के प्रति दुराग्रह का भाव था। पाश्चात्य रंग दृष्टि के पोषक समीक्षक तो खैर इसे पचा ही नहीं पाए, लेकिन भारतीय रंग परंपराओं के जाने माने समर्थकों ने भी इस पर भरपूर प्रहार किए। भारतीय रंगमंच के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन प्रतिक्रियाओं को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उस समय बद्री विशाल पित्ती द्वारा हैदराबाद से प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्पना को विशेष साहित्यिक रुतबा मिल चुका था। उसके एक अंक में डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने एक लंबा लेख लिखा, उसके कुछ अंश। मिट्टी की गाड़ी के सभी प्रदर्शन पक्षों को यदि अलग अलग लिए तो हम देखते हैं कि नाट्यधर्मी और लोकधर्मी दोनों प्रकार की परंपराओं की बहुत बड़ी अवहेलना की गई है। पात्र तरह तरह के विचित्र वेशभूषा में प्रस्तुत किए गए हैं, घाघरे, लहंगे, धोतियाँ, पायजामे, तहमत, बंडी, कुर्ते, अजीबो गरीब तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ और चिथड़ी और सरकंडों के मुखौटे पहनकर पात्र आते हैं और सूत्रधार तो ओवर कोट पहने हुए पाइप पीता हुआ नाट्य प्रदर्शन की सूचना देता है। वेशभूषा और चुनाव और इसके प्रयोग किसी तरह का विवेक और व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार रंगमंच पर पात्रों के नृत्यवत गतियाँ, अभिनय, समूहन, अनेक दृश्य उपकरणों का प्रयोग, यह सभी कुछ तरह तरह की मिली जुली शैलियों से प्रस्तुत किया गया। कभी तो इसमें प्रहसन जैसी अतियुक्तियाँ और कलाबाजियाँ दिखाई देती हैं, कभी बहुत ही शैलीगत रूढ़ियाँ और नितांत स्वाभाविक मुद्राएँ और अंग संचालन प्रस्तुत किए जाते हैं। अनेक शैलियों को यह मिला जुला रूप निर्देशन के सभी पक्षों में व्यक्त हुआ है, जिससे पूरे प्रदर्शन में किसी प्रकार की रूप और शैलीगत एकता नहीं आ सकी है। प्रदर्शन का यह रूप और शैलीहीनता और विविधता दर्शकों के रसानुभव में भी बाधक बन जाती है। हबीब तनवीर ने अपनी इस प्रस्तुति को कई नौटंकी की संज्ञा दी थी। इसके पीछे उनका मंतव्य जाने बिना इस पर भी भारी विवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इस प्रस्तुति में उत्तर प्रदेश के पारंपरिक रंग शैली नौटंकी का तो कोई भी चिन्ह परिलक्षित नहीं था। अपने इसी आलेख में डॉक्टर अवस्थी ने आगे लिखा, इस प्रदर्शन के प्रयोग पक्ष पर चाहे कुछ भी उद्देश्य हो, चाहे वो केवल प्रदर्शन की प्रचलित रीतियों को छोड़कर निर्देशक कुछ नया प्रस्तुत करना चाहता हो और चाहे उसका उद्देश्य इससे कुछ अधिक गंभीर और मौलिक हो, किंतु यदि निर्देशक उसे नई नौटंकी का कर सिद्ध करना चाहता है कि उसने लोक नाट्य रूपों का पुनर्गठन करने और उनको शहरी समाज के लिए आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए हमको सही रास्ता दिखाया है, तो मैं समझता हूँ यह दावा गलत और भ्रामक होगा। यह प्रदर्शन किसी प्रकार से भी नौटंकी के रंगमंची तत्वों और गुणों को उजागर नहीं करता है। सच बात तो यह है कि नौटंकी नाट्य रूप के जो गुण और उसकी विशेषताएं हैं उनको भी इस प्रदर्शन में उपयोगी और प्रभावशाली ढंग से अपनाया नहीं गया, बल्कि उनको कुछ हद तक भ्रष्ट और कलाहीन बना दिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि हमको अपने प्रदर्शन में लोक नाट्य रूपों के बहुत कुछ तत्व अपनाने हैं और अपना नया शहरी नाटक विविध रूपों में ढालना और संवारना है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम लोक नाट्य रूपों की कल्पना परंपराओं और प्रवृत्तियों की अच्छी तरह समझ लें और गहरी रचनात्मक दृष्टि के साथ सारी सामग्री का संस्करण करें। डॉक्टर अवस्थी के लेख के अंशों का लेख इसलिए आवश्यक है कि इस बारे में उस समय के नाटक समीक्षकों के मानदंडों का मूल्यांकन कर सकें। इस तथ्य में उनकी कोई दो राय नहीं हो सकती कि डॉक्टर अवस्थी उस समय भारतीय रंग परंपरा के पुनरुत्थान के लिए संघर्षरत शीर्षस्थ विचारकों और समीक्षकों में से एक थे। पाश्चात्य स्थापित रंग मुहावरों को स्वीकार करके भारतीय परंपरा को पुनर्स्थापित करने के उनके प्रयत्न श्लाघनीय रहे हैं, लेकिन उस समय उनकी सोच पूरी तरह विशुद्धतावादी थी, जो रंगमंच की तात्कालिक स्थितियों और उसकी प्रयोगात्मक राहों के अन्वेषण की चुनौतियों को पूरी तरह अभिज्ञ नहीं थी। उस समय संस्कृत नाटकों को मंचित करने की दो पद्धतियां प्रचलित हो चुकी थी। एक और नाट्यशास्त्र और भारतीय परंपरा के समाहक लोग थे जो नाट्यशास्त्र को सामने रखकर हरेक स्तर पर उसके अनुरूप एक पद्धति के अन्वेषण में लगे हुए थे। डॉक्टर वी राघवन इस कोटि के ऐसे विद्वान थे जिन्होंने नाट्यशास्त्र का गहरा अध्ययन किया था और पाश्चात्य नाट्य पद्धति के बरक्स नाट्यशास्त्र में वर्णित उन विशेषताओं को पुरजोर तरीके से सामने रखा था जिनकी ओर सामान्य रंगकर्मियों का ध्यान ही नहीं गया था। दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग था जो संस्कृत नाटकों को मंचित करने के लिए स्थापित पाश्चात्य मुहावरों का अंधानुकरण कर रहा था और यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा था कि अरस्तु के नाट्यशास्त्र में वर्णित अनेकानेक प्रसंग भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में भी पाए जाते हैं। संस्कृत के अनेक पंडितों ने भास और कालिदास से लेकर विशाखदत्त, शूद्रक और महेंद्र विक्रम तक के नाटकों में अरस्तु की तीन एकताओं के आधार पर उनमें अनेक दोष गिराए हैं, उनका जिक्र विस्तार से अगले अध्याय में किया जाएगा। मूल बात यह है कि उन नाटकों के मंचन के लिए उन्होंने संस्कृत और मौलिक आलय में इसी दृष्टि के अनेक परिवर्तन कर डाले। उनकी दृष्टि से संस्कृत नाटकों के में साहित्यिक गुणवत्ता तो भरपूर है, लेकिन उन नाटककारों की रचनाओं में रंगमंचीयता एकता का अभाव था। जाहिर है कि अभी तमिल इन दोनों धर्मों के बीच अपना रास्ता तलाश कर रहे थे। पाश्चात्य पद्धति से संस्कृत नाटकों को मंचित करने वाले वर्ग को उन्होंने कतई कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन विशुद्धतावादी नाट्य चिंतकों को वे भी स्वीकार नहीं कर पाए। संस्कृत नाटकों को विशुद्ध शास्त्रीय नाट्य शैली प्रस्तुत करने के संबंध में उनके विचार आईने की तरह साफ हैं। दरअसल सही बात तो यह है कि किसी को शास्त्रीय नाट्य शैली का ज्ञान ही नहीं है वह शास्त्रीय नाट्य शैली में नाटक करे। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत कुछ भ्रम शामिल है, और वह भी गलत भ्रम। संस्कृत के नाटकों को पढ़ना और उसे समझना एक बात है और उसे स्टेज करना बिल्कुल अलग। डॉक्टर राघवन की हम सब इज्जत करते हैं, उनकी किताबें पढ़े बिना संस्कृत के नाटकों का कदम उठाना मुश्किल है। मैंने उनकी किताबें पढ़ी, बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जब उनका मृच्छकटिक देखा तो लगा उन्हें प्रोडक्शन की कोई जानकारी नहीं है। संस्कृत के पंडित नाटक के एक एक शब्द का बड़ी बारीकी से अर्थ करते हैं, उन अर्थों की खूबसूरती में गोते लगाते हैं, लेकिन थिएटर से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। यह हकीकत लोग मानने को तैयार नहीं कि शास्त्रीय नाट्य शैली के नाट्य धर्म के नाम पर कुछ मूर्तियों के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। इन मूर्तियों से हमारे डांस में रिवाइवल आया, लेकिन इसकी चर्चा बहुत ही कम की जाती है। आज हम जो कुछ देख रहे हैं हजारों साल पहले भी वही था। यह एक बड़ा भ्रम है जिसे हम पाल रहे हैं। कल्चर एक डायनामिक चीज है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरे, यह भी जरूरी कि हम संस्कृत नाटकों में कही गई बात को सहज रूप में पकड़ने की कोशिश करें। मिट्टी की गाड़ी के इस प्रदर्शन में उन्होंने अभिनय की सहजता की रक्षा करने का बहुत भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन इसी सहजता की रक्षा के प्रयत्न में उनका कलात्मक सौंदर्य पूरी तरह उभर नहीं सका। कथा के सहज प्रभाव ने दर्शकों को आनंदित तो किया, लेकिन चरित्रों का आंतरिक संघर्ष और उनके अंतर्मन की अनेक सूक्ष्म व्यंजनाएं खो गईं। नगर के प्रशिक्षित कलाकारों के अभिनय में सहजता नहीं थी जो आंचलिक कलाकारों में थी, और आंचलिक कलाकार सूक्ष्म भाव को व्यक्त करने में इतने सफल नहीं हो सके थे। हबीब तनवी का यह अनुभव उनके बाद की प्रस्तुतियों में तो खूब काम में आया, लेकिन मिट्टी की गाड़ी की पहली प्रस्तुति में वह गहरा अनुभवी बनकर रह गया। लेकिन यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मिट्टी की गाड़ी कि इस प्रदर्शन से अभी तमिल का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हुआ। संस्कृत नाटकों को मंचित करने की जिस प्रणाली को उन्होंने अंततः खोज निकाला वह प्रस्तुति उसकी पहली सीढ़ी थी और वह इसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। कलात्मक स्तर को बनाए रखने शायद उनका अभिष्ट भी नहीं था। उनके शब्दों में, कलात्मक स्तर की दृष्टि से देखें तो इस नाटक में वैसा कुछ करने और पाने की आशा नहीं थी जो आमतौर पर होनी चाहिए थी, लेकिन इस अनुभव के कारण मैं मानने लगा हूँ कि भविष्य में मंचित किए जाने वाले सभी नाटकों में ऐसे अभिनेताओं को चुनना श्रेयस्कर होगा जो नाचने, गाने, मुख अभिनय और वार्षिक अभिनय आदि में सभी प्रकार से प्रवीण हो, भले ही नाटक समकालीन हो या शास्त्रीय, देशी हो या विदेशी। ऐसे अभिनेताओं के साथ भविष्य के निर्देशकों की विश्वजनीन दृष्टि उस प्रस्तुति को पूरी तरह सफल बनाएगी। वही टोटल थिएटर हमें आनंद देगा, वही मेरा अभिष्ट है। हबीब तनवीर के इस नज़रिए से बेगम जैदी पूरी तरह मुतासिर थी। तरह तरह के आलोचनाओं और छिटाकशी का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मिट्टी की गाड़ी की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बावजूद उन्होंने हबीब तनवीर से आग्रह किया कि विशाख दत्त के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का निर्देशन करें, लेकिन हबीब तनवीर इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि मुद्रा राक्षस एक अत्यंत कठिन नाटक है जिसे मंचित करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है। उनका सोच था कि मिट्टी की गाड़ी के बाद हुए अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा राक्षस के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय चाहिए। यह कहा जा चुका है कि बेगम जैदी अत्यंत प्रतिभावान एक निष्ठ महिला थी। हबीब तनवीर के प्रति उनका विश्वास कम नहीं था, लेकिन हिंदुस्तानी थिएटर की गतिविधियों में इतना बड़ा वक्फा उन्हें मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ मुद्रा राक्षस के अलावा किसी और नाटक उठाने के पक्ष में भी वो नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों में इतना विवाद पड़ा कि बेगम जैदी ने हिंदुस्तानी थिएटर से हबीब तनवीर को निकाल बाहर किया। हबीब तनवीर के बाद MS सथियों को हिंदुस्तानी थिएटर का निदेशक नियुक्त किया गया, लेकिन वे भी वहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। थोड़े ही समय बाद बेगम जैदी की मृत्यु हो गई और थिएटर के हिंदुस्तानी अंदाज के एक महत्वपूर्ण चरण का भी अंत हो गया।